अब हम अगले अध्याय जिसका शीर्षक है सामाजिक स्तरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसकी चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्न रूप से स्तरण एवं विभेदीकरण, स्तरण की विशेषताएं, सामाजिक स्तरण की आधार या पद्धति यानी बेसिस और सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हैसियत के प्रकार तथा निर्धारक, स्तरण के निर्धारक, सामाजिक स्तरण के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरण के प्रकार एवं दुष्प्रकार, फंक्शंस एंड डाइस फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक स्तरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। समाजशास्त्र के क्षेत्र में स्तरण जैसे विषय का विशेष महत्व है, इसीलिए कि इसके आधार पर समाज में व्याप्त असमानता का अध्ययन संभव है। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां सभी लोग लगभग समान हैं, और न ही किसी समाज में सभी सदस्यों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल पाता है। इस व्याप्त असमानता के कारण समाज में अक्सर तनाव और विरोध देखने को मिलता है। स्तरण के अध्ययन के माध्यम से समाजशास्त्री मुख्य रूप से तीन बातों का अध्ययन करते हैं। पहला, जीवन अवसर यानी लाइफ चांसेस। व्यक्ति को समाज में जीवित रहने के लिए या आगे बढ़ने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह सभी लोग को समान रूप से उपलब्ध नहीं है। क्या हर एक व्यक्ति को शिक्षा या नौकरी पाने का समान अवसर मिल पाता है? भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में क्या भेदभाव बरता जाता है? दूसरा, सामाजिक हैसियत यानी सोशल स्टेटस। समाज में सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर खड़े नहीं होते हैं। समाज एक श्रेणीबद्ध अवस्था व्यवस्था है। कुछ लोगों को जन्म से ऊंचा स्थान प्राप्त होता है तो कुछ लोगों को बहुत कोशिश के बावजूद ऊंचा स्थान कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। राजे महाराजे के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति सदा ऊंचे हैसियत का व्यक्ति माना जाता है। कुछ ऐसे भी समाज हैं जहां मनुष्य अपनी कोशिशों से समाज में बड़ा से बड़ा स्थान प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों होता है यह समाजशास्त्रियों के लिए एक चिंतन का विषय है। तीसरा, राजनीतिक प्रभाव यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे समूह होते हैं जो दूसरों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं और नीचे वाले लोगों के को ऊपर जाने से प्रायः वंचित रखने की कोशिश करते हैं। हिंदू समाज में पिछड़ों तथा दलितों को हमेशा दबा कर रखने की चेष्टा की गई है। उसी तरह पाश्चात्य देशों में भी निग्रो लोग को काफी दबा कर रखा जाता है। समाजशास्त्रियों को ऐसे तथ्यों में विशेष रुचि है। हर समाज में कुछ वैसे सामाजिक समूह होते हैं जो ऊपर के तीनों क्षेत्रों में काफी भारी पड़ते हैं। जो समाज में काफी आगे हैं वे दबे कुचले लोगों पर अपना प्रभुत्व यथावत बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इन्हीं तथ्यों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरण का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। भारत के संदर्भ में अस्तरण जैसे विषय का कुछ विशेष ही महत्व है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में जितनी विषमताएं रही हैं, उतनी विषमताएं शायद ही किसी अन्य देश में देखने को मिले। प्रजातांत्रिक एवं साम्यवादी मूल्यों की स्थापना के बावजूद आज भी भारत में काफ़ी विषमताएं देखने को मिल रही हैं। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कुत्तों को भी भरपूर दूध या मांस खाने को मिल जाता है। दूसरी तरफ आज उसी देश में ऐसे लाखों गरीब और बेसहारा लोग हैं जिन्हें प्यास बुझाने के लिए भी स्वच्छ पानी तक नहीं मिल पाता है। सामाजिक अस्तरण समाज में मौजूद असमानता का एक पहलू है। सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न असमानताएं मौजूद होती हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सुविधा, शक्ति तथा प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित श्रेणियों तथा अस्तरों का अस्तित्व पाया जाता है। सुविधा तथा शक्ति के उपयोग के दृष्टिकोण से इन विभिन्न स्तरों का सामाजिक संरचना में स्थान क्रम निर्धारित होता है। जिनके पास अधिक सुविधा और शक्ति होती है उनका सामाजिक स्तर ऊंचा माना जाता है। ठीक इसके विपरीत कम सुविधा और शक्ति से संपन्न लोगों का सामाजिक स्तर निम्न माना जाता है। यह पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार का अस्तरण अवश्य पाया जाता है। कोई भी समाज समतल धरातल की तरह नहीं होता है। जैसे भूगर्भ के अंतर्गत बहुत तरह के स्तर यानी लेयर पाए जाते हैं, समाज में भी उसी प्रकार बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं जो एक विशेष तरीके से श्रेणीबद्ध होते हैं। अस्तरण समाज में पाए जाने वाली असमानताओं का एक समाजशास्त्रीय नाम है। इसीलिए तो गिडेंस ने कहा है कि स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल। गिडेंस 1998। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अस्तरण के अंतर्गत हम व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली असमानताओं का नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह के स्तर पर पाए जाने वाली असमानता का अध्ययन करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, शिक्षा, पेशा या प्रजाति के आधार पर पाए जाने वाली असमानता को हम अस्तरण नहीं कहते हैं। सही मायने में उसे सामाजिक विभेदीकरण कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। दूसरी तरफ यदि जाति, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, आय एवं पेशों के आधार पर समाज में पाई जाने वाली असमानता या विभिन्नता को सामूहिक स्तर पर देखा जाता है तो उसे अस्तरण कहा जाएगा। मुख्य रूप से इस दुनिया में सामाजिक अस्तरण पांच आधारों पर होता है, जैसे दास प्रथा यानी स्लेवरी, वर्ण, जाति, स्टेट एवं वर्ग। अस्तरण में चार प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे पहला विभेदीकरण यानी डिफ्रेंशिएशन, दूसरा क्रम विन्यास यानी रैंकिंग, तीसरा मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन और चौथा पुरस्कार एवं दंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यहाँ हम बारी बारी से इन चारों प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे। पहला विभेदीकरण यानी डिफ्रेंशिएशन। अस्तरण के संदर्भ में विभेदीकरण का अर्थ है भूमिकाओं, अधिकारों और दायित्वों का बंटवारा। समाज में विभिन्न समूहों का कार्य अलग अलग होता है। प्रत्येक समूह में भूमिकाओं और दायित्वों का सफल निर्वाह करने पर समाज में प्रोत्साहन और पुरस्कार की व्यवस्था होती है। दूसरा, क्रम विन्यास। अस्तरण के अंतर्गत लोगों को उसकी हैसियत के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, जहां उनके व्यक्तिगत गुणों, उनकी दक्षता और उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। प्रत्येक समाज अपने प्रचलित मूल्यों के आधार पर व्यक्तियों की स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस समाज में किसी स्थिति को कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त है। मूल्यांकन के मापदंड वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों ही हो सकते हैं। चौथा, पुरस्कार एवं दंड। प्रत्येक अस्तरण में पुरस्कार और दंड की व्यवस्था होती है। समाज अपने मूल्यों के अनुसार सभी कार्यों का मूल्यांकन करता है और उसी के अनुसार व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। समाज व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करने के लिए ही ऐसा कदम उठाता है। अस्तरण एवं विभेदीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। कुछ समाजशास्त्री सामाजिक अस्तरण को विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन और विभेदीकरण को सामाजिक अस्तरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन समझ बैठते हैं। कुछ लोग वैसे भी हैं जो दोनों में ठीक से भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए दोनों के अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। सामाजिक अस्तरण के अंतर्गत एक प्रकार का दीर्घकालीन उद्देश्य देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष स्थिति वाले व्यक्ति या समूहों को अधिक अधिकार, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि प्राप्त होता है। सामाजिक अस्तरण जानबूझकर निर्मित की गई व्यवस्था है। इसके विपरीत सामाजिक विभेदीकरण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। सामाजिक अस्तरण में ऊंच नीच यानी प्रतिष्ठा, अधीनता या हीनता की भावना पाई जाती है। सामाजिक विभेदीकरण के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के बीच एक प्रकार का विभाजन पाया जाता है, जिसमें ऊंच नीच या हीनता की भावना नहीं भी रह सकती है। यह एक तटस्थ प्रक्रिया है। सामाजिक अस्तरण के आधार जटिल हो सकते हैं। इसके आधार पारिवारिक प्रतिष्ठा, संपत्ति, शिक्षा, पेशा, शक्ति इत्यादि भी हो सकते हैं, जबकि सामाजिक विभेदीकरण में ऐसी बात नहीं होती है। सामाजिक विभेदीकरण के आधार कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट होते हैं। इसका आधार जैविक भी हो सकता है, जैसे रूप रंग, उम्र, यौन विभेद, स्वास्थ्य इत्यादि। मात्र जैविक आधार पर सामाजिक विभिन्नता को अस्तरण नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक विभेदीकरण सामाजिक अस्तरण की तुलना में अधिक प्राचीन है। दो व्यक्तियों या परिवार के बीच अंतर या असमानता को विभेदीकरण कहा जाएगा, अस्तरण नहीं। अस्तरण का स्वरूप सामाजिक होता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर समाज में देखा जाता है। अस्तरण विभेदीकरण की तुलना में एक बहुत ही बृहत्तर संबोध है। अस्तरण समाज का एक समस्तरीय यानी हॉरिजॉन्टल विभाजन है, तो विभेदीकरण विषम स्तरीय या खड़ा यानी वर्टिकल बंटवारा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अस्तरण विभिन्न स्तरों का नीचे से ऊपर एक प्रकार की श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। विभेदीकरण एक खड़ा विभाजन है जहां विभिन्न खंडों की श्रेणीबद्धता की बात नहीं होती है। अस्तरण की विशेषताएं। अब हम अस्तरण की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अस्तरण का अर्थ इतना जटिल है कि परिभाषा मात्र से इसे ठीक से नहीं समझा जा सकता। अतः यहां अस्तरण की विशेषताओं की चर्चा की जा रही है। मेटा स्पेंसर ने अस्तरण के प्रमुख विशेषताओं पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। पहला, अस्तरण का स्वरूप सामाजिक होता है। स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल। अस्तरण के आधारभूत तत्व सामाजिक होते हैं। सही अर्थ में जैविक आधार पर अस्तरण का निर्माण नहीं हो सकता है। उदाहरण स्वरूप रंग, ऊंचाई, मोटापा, उम्र एवं लिंग भेद के आधार पर समाज में विभेदीकरण स्थापित किया जा सकता है, अस्तरण नहीं, क्योंकि वे व्यक्ति के जैविक गुण हैं। पर यदि जैविक आधार को सामाजिक मान्यता प्राप्त है तो वह अस्तरण का आधार माना जा सकता है। जैसे उम्र के आधार पर बुजुर्ग और जवान लोगों के बीच भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से भेद किया जाता है, इसीलिए उम्र को अस्तरण का आधार माना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री पुरुष के बीच प्रतिष्ठा का काफी बड़ा फर्क होता है, इसीलिए लिंग भेद एक जैविक आधार होते हुए भी अस्तरण का आधार हो सकता है। पर यदि उसमें प्रतिष्ठा का भाव नहीं है तो उम्र या लिंग के आधार पर स्थापित विभाजन को विभेदीकरण यानी डिफ्रेंशिएशन कहा जाएगा, सामाजिक अस्तरण नहीं। दूसरा, अस्तरण एक प्राचीन व्यवस्था है। स्ट्रैटिफिकेशन इज एंशिएंट। संभवतः समाज में अस्तरण प्रारंभ से ही चला आ रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन बेबीलोन, रोम, फारस, मिस्र एवं यूनान के समाज में भी अस्तरण पाया जाता था। सामाजिक अस्तरण कोई मध्यकालीन या आधुनिक युग की ही विशेषता नहीं है। तीसरी विशेषता, अस्तरण सर्वव्यापी है। स्ट्रैटिफिकेशन इज यूबिक्यूटिस। दुनिया के हर समाज में किसी न किसी आधार पर अस्तरण अवश्य पाया जाता है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा समाज हो जहां अस्तरण नहीं पाया जाता है। मानव शास्त्रियों का कहना है कि अफ्रीका के बुशमैन, जो 50 या 100 व्यक्तियों के झुंड में रहकर जीवन निर्वाह के लिए जंगलों में भोजन इकट्ठा करते हैं, वहां भी अस्तरण पाया जाता है। यह स्वाभाविक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में किसी न किसी रूप में प्रतिष्ठा, शक्ति एवं संपत्ति की लालसा अवश्य पाई जाती है। चौथी विशेषता, अस्तरण का स्वरूप असमान होता है। स्ट्रैटिफिकेशन इज डाइवर्स। सामाजिक अस्तरण का स्वरूप विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। किसी समाज में यह वर्ग पर आधारित होता है तो किसी और समाज में या जाति व्यवस्था पर। कहीं पर यह अर्जित गुणों के आधार पर होता है तो कहीं यह आरोपित गुणों के आधार पर। किसी समाज में प्रजाति एवं धर्म की भूमिका स्तरण में अहम होती है तो किसी समाज में शिक्षा, संपत्ति या शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पांचवी विशेषता, स्तरण परिणामी होता है। स्ट्रेटिफिकेशन इज कंसिक्वेंशनल। समाज में स्तरण का जैसा आधार होगा समाज का स्वरूप भी वैसा ही होगा। सामाजिक मूल्य, प्रतिमान, व्यक्तियों की जीवन शैली, ये सभी उस समाज के स्तरण में प्रतिबिंबित होते रहते हैं। यदि सामाजिक स्तरण का आधार वर्ग है तो वहाँ व्यक्तियों को आगे बढ़ने का लगभग समान अवसर प्राप्त होता है। समाज में इतना खुलापन होता है कि समाज के उच्च स्तर के लोग नीचे और नीचे स्तर के लोग ऊपर खिसकते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत, यदि समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है तो वहाँ सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का समान अवसर नहीं प्राप्त होता है। चूंकि सामाजिक हैसियत यानी सोशल स्टेटस का आधार जन्म होता है, अतः सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बंद होता है। संक्षेप में हम यहाँ यही कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरण के फलस्वरूप समाज में सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। समाज में सुविधाओं, संसाधनों, पुरस्कारों, शक्ति, मान आदर, प्रतिष्ठा, आर्थिक अवसर इत्यादि का असमान वितरण होता है। सामाजिक स्तरण के विभिन्न आधारों पर समाज में श्रेणी तथा स्तर का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना में इन श्रेणियों अथवा स्तरों के सोपान क्रम का निर्धारण प्राप्त सुविधा, शक्ति तथा प्रतिष्ठा के आधार पर होता है। इन श्रेणियों तथा स्तरों के पारस्परिक संबंधों के बीच का एक प्रकार की क्रमबद्ध सामाजिक असमानता दिखाई पड़ती है। अब हम सामाजिक स्तरण के आधार या पद्धति के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिस और सिस्टम्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मानव शास्त्रियों एवं इतिहासकारों के अध्ययन से यह पता चला है कि अब तक का समाज मुख्य रूप से पांच आधारों पर विभक्त रहा है। जैसे पहला दास प्रथा यानी स्लेवरी, दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा जाति, चौथा स्टेट एवं पांचवा वर्ग। कभी तो कोई समाज इन पांचों में से किसी एक आधार पर स्थिरित रहा है तो कभी एक साथ दो आधारों पर भी। उदाहरण स्वरूप मध्यकालीन युग में यूरोप का समाज जहां दास प्रथा एवं स्टेट व्यवस्था पर आधारित था, तो आज वही यूरोप मुख्य रूप से वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। उसी तरह प्राचीन काल में भारत के सामाजिक स्तरण का आधार वर्ग, वर्ण एवं बाद में जाति हुई, तो वही आज जाति एवं वर्ग दोनों स्तरण का मुख्य आधार है। यहाँ हम पांचों आधारों की संक्षिप्त चर्चा बारी बारी से करेंगे। दास प्रथा यानी स्लेवरी। दास प्रथा एक आखिरी किस्म की सामाजिक असमानता का घोतक है। प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में इस प्रथा का प्रचलन कई मुल्कों में था, पर इस प्रथा में भी काफी भिन्नताएं थीं। कुछ समाज में दासों को कोई भी आर्थिक और कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, तो कुछ समाजों में उसे थोड़ा बहुत इंसानी हक प्राप्त था। इस प्रथा के तहत आर्थिक और कानूनी दोनों प्रकार की असमानताएं मौजूद थीं। गुलामों की जिंदगी कहीं जानवरों की तरह थी, तो कहीं कृषि मजदूरों या घरेलू नौकरों की तरह। विभिन्न प्रकार के साहित्यों को देखने से ऐसा लगता है कि दास प्रथा के अंतर्गत दासों का जीवन लगभग जानवरों की तरह था। यूनान यानी ग्रीस में कभी राजा महाराजा गुलामों का जानवरों की तरह खरीद बिक्री किया करते थे। उन्हें पांव में लोहे की जंजीर डालकर रखते थे। उनसे दिन भर घरों तथा खेत खलिहानों में काम लिया जाता था। विभिन्न त्योहारों के अवसर पर उन्हें कुश्ती लड़ना होता था, जहां शाही परिवार के लोग चारों तरफ बैठकर शराब के नशे में उसका आनंद लिया करते थे, और उन्हें कुश्ती लड़ने के लिए तब तक बाध्य किया जाता था जब तक कि उनमें से एक मर नहीं जाता था। मरे हुए गुलाम के मांस को बूटी बूटी कर शाही परिवार के कुत्ते को खिलाया जाता था। 18वीं एवं 19वीं सदी में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में दासों में माफ करिए, इसे फिर से सुनिए। 18वीं एवं 19वीं सदी में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में दासों से खेती बाड़ी का काम लिया जाता था। तो दूसरी तरफ प्राचीन यूनान में उनसे बहुत जिम्मेदारी का भी काम लिया जाता था। राजनीति एवं सेना को छोड़कर प्रशासन के विभिन्न भागों में उनसे काम लिया जाता था। चूंकि प्राचीन रोम में तिजारत को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, बहुत सारे गुलामों ने इस काल में इस पेशे से काफी धन संपत्ति इकट्ठा किया। पर आम तौर पर गुलामों की जिंदगी इतनी खराब थी कि लोगों ने कई बार अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह भी किया था। 19वीं सदी तक पाश्चात्य देश के लोगों ने गुलामों का व्यापार भी किया था, पर आज प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं अर्थव्यवस्था में इतना अधिक विकास हो गया है कि दास प्रथा का करीब करीब खात्मा हो गया है। आज दासता के आधार पर शायद ही कहीं सामाजिक स्तरण देखने को मिलता है। दूसरा, वर्ण। दुनिया के अधिकांश समाज में सामाजिक स्तरण का आधार वर्ग रहा है, लेकिन प्राचीन काल से भारतीय समाज में वर्ण और जाति ही स्तरण का आधार रहा है। वर्ण व्यवस्था का उद्भव भारतीय समाज एवं संस्कृति के विकास के प्रारंभिक दौर में हुआ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय समाज में कृषि विकास के परिणाम स्वरूप जो एक नई उत्पादन प्रणाली आई, उसके संचालन के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ी होगी, जिससे समाज में वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ होगा। वर्ण संभवतः स्तरण का प्राचीनतम आधार है। प्रारंभ में ऋग्वेद के अंतर्गत दो ही वर्ण की चर्चा मिलती है, आर्य वर्ण एवं दास वर्ण। पर उसी वेद में समाज के तीन स्तरीय विभाजन की भी चर्चा की गई है, ब्रह्म, क्षत्र एवं वैश्य। शूद्र जो चौथा या सबसे निम्न सोपान पर खड़े हैं उसकी चर्चा नहीं मिलती है, पर ऐसे सामाजिक समूहों की चर्चा अवश्य की गई है जिसे आर्य लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, जिसे अयोग्य, चंडाल एवं निषाद कहकर पुकारा गया है। यही लोग संभवतः आगे चलकर शूद्र कहलाए। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रारंभ में शूद्र लोग अछूत नहीं माने जाते थे। वे लोग मजदूर, सेवक, नौकर या रसोईया का भी काम किया करते थे। प्रारंभ में वर्णों का कोई सोपान क्रम भी नहीं हुआ करता था, वे सभी बराबर हुआ करते थे। विभिन्न वर्णों के बीच आपस में शादियां भी होती थी। जब भारतीय समाज वैदिक कालीन 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक से ब्राह्मण काल यानी 230 बीसी से लेकर 700 एडी तक में आया, तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित सोपान क्रम विकसित हुआ। वर्ण व्यवस्था को अच्छी तरह समझने के लिए वर्ण के अर्थ को भी समझना आवश्यक प्रतीत होता है। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ रंग होता है। इससे स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का आधार रंग रहा होगा। इस तरह आरंभिक काल में गोरे रंग के विजयी या शोषक लोगों का एक वर्ण समूह तथा श्याम रंग के द्रविड़ एवं काले रंग के मूल निवासियों का दूसरा वर्ण समूह बना। इरावती कर्वे का कहना है कि वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इस शब्द का प्रयोग सोपान क्रम यानी हायरार्की के संबंध में हुआ है, जबकि धुरिये एवं श्रीनिवास रंग के ही अर्थ को ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। मानक संस्कृत शब्दकोश के अनुसार वर्ण के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ वर्ण करना या धारण करना और दूसरा अर्थ है जन्मजात वृत्ति या स्वभाव। इस तरह वर्ण उन चार अस्थाई सामाजिक समूहों का नाम है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा अपनी स्वाभाविक वृत्ति, स्वभाव एवं गुण के अनुसार स्वेच्छा से चुने हुए व्यवसाय के आधार पर होता है। समाज में परिवर्तन के साथ साथ यह परिभाषा भी अनुपयुक्त हो गई। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के परिणाम स्वरूप समाज में श्रम विभाजन उत्पन्न हुआ। इससे समाज में गुण, व्यवसाय एवं कर्म के आधार पर अस्थाई वर्ण विभाजन की व्यवस्था कायम हुई। समय बीतने के साथ साथ यह व्यवस्था जन्म पर आधारित न रहकर कर्म पर आधारित हो गई। संक्षेप में वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज में सभी सदस्यों को जन्म, गुण, कर्म, अधिकार, व्यवसाय और पद के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित करने की एक अस्थायी व्यवस्था थी। उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में व्यक्तियों को चार वर्णों में बांटा गया है। वे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य पूजा पाठ कराना एवं करवाना तथा मानव एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थता का कार्य करना था। क्षत्रियों का कार्य अस्त्र शस्त्र द्वारा समाज की सुरक्षा प्रदान करना था। वैश्य का कार्य था समाज में आर्थिक उत्पादन एवं सुचारू वितरण के लिए व्यापार का संचालन करना। इसी तरह शूद्रों का कार्य शारीरिक श्रम करना था, ताकि समाज के लोगों को उनकी सेवा का समुचित लाभ मिले। इससे स्पष्ट है कि समाज में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, श्रम एवं सेवाओं की आवश्यकता पूर्ति के निमित्त वर्ण व्यवस्था कायम हुई। पहले यह व्यवस्था गुण एवं कर्म पर आधारित थी, जो आगे चलकर जन्म एवं पेशा पर आधारित हो गई। धीरे धीरे वर्ण की जगह भारतीय समाज जाति के आधार पर स्तरित हो गया। तीसरा, जाति यानी कास्ट। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म के लोग जातीय आधार पर श्रेणीबद्ध रहे हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के पूर्व हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर श्रेणीबद्ध था। जाति व्यवस्था के आने से हमारा समाज हजारों खंडों में समस्तरीय और विषमस्तरीय रूप में, यानी हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली विभक्त हो गया। अस्तरण की दृष्टि से विषम स्तरीय बंटवारा यानी वर्टिकल डिवाइजन का महत्व भले ही नगण्य हो, पर समस्तरीय यानी हॉरिजेंटल बंटवारा की महत्ता ये तो रहेगी ही। वर्ग व्यवस्था की तुलना में जाति व्यवस्था के अंतर्गत श्रेणीबद्ध समूहों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आधुनिक भारत में मात्र जातीय आधार पर ही समाज का विभाजन नहीं हो रहा है, बल्कि वर्ग व्यवस्था के आधार पर भी स्तरण हो रहा है। जैसा कि हट्टन ने बताया है, भारत में कोई 5,000 जातियां व उपजातियां हैं। विभिन्न जातियों के बीच समाज में लोगों को शिक्षा, पद, आमदनी, पेशा या किसी व्यक्तिक गुण के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। आज कहीं जाति पर आधारित स्तरण का प्रभाव है, तो कहीं वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। परंपरागत स्तरण के आधार में थोड़ी कमी आई है और वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरण के प्रतिमानों एवं मूल्यों में वृद्धि हुई है। स्तरण के संदर्भ में जाति प्रथा के ऊपर कई समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने अध्ययन किया है। कुछ विद्वानों ने जाति व्यवस्था के संरचनात्मक पहलू पर जोर दिया है, तो कुछ ने सांस्कृतिक पहलू पर। इन दोनों पहलुओं के अंतर्गत कुछ ने सार्वभौमिक पहलू पर जोर दिया है, तो कुछ ने विशिष्ट पहलू पर। जाति व्यवस्था के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों को इस प्रकार रखा जा सकता है। पहला, संरचनात्मक दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिसमें ए सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सलिस्टिक और दूसरा व्यक्तिवादी यानी पर्टिकुलरिस्टिक। दूसरा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी कल्चरल अप्रोच, इसमें ए सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सलिस्टिक और बी व्यक्तिवादी यानी पर्टिकुलरिस्टिक। चौथा, एस्टेट। कुछ लोगों ने इस शब्द का हिंदी अनुवाद जागीर किया है। वैसे इसके कई अर्थ हैं और जागीर उनमें से एक है, लेकिन अस्तरण के संबंध में जागीर एक अनुपयुक्त अनुवाद है। हिंदी या उर्दू में जागीर इतना संकुचित अर्थ का शब्द है कि यूरोप की अस्तरण पद्धति का समस्त भाव अपने आप में यह शब्द समेट ही नहीं पाता है। जिस अर्थ में इतिहासकार और समाजशास्त्री यूरोप के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसके लिए अभी तक हिंदी में कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। इसलिए यहाँ अंग्रेजी शब्द ही उसी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में दी गई स्टेट शब्द की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है, अ सिस्टम और स्ट्रेटिफिकेशन फाउंड हिस्टोरिकली इन यूरोप एंड रसिया विच लाइक कास्ट कॉन्टेंट शार्प डिफरेंसेस एंड रिजिड बैरियर्स बिटवीन स्मॉल नंबर्स ऑफ स्टेट। अनलाइक कास्टेड स्टेट्स वेयर क्रिएटेड पोलिटिकली बाई मैन मेड लॉस रैदर देन रिलीजियस रोल्स। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि यूरोपीय समाज कभी स्टेट के आधार पर स्तरित था। जाति व्यवस्था की ही तरह लोग विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समूहों में इस प्रकार श्रेणीबद्ध थे कि एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाना काफी कठिन काम था। मध्यकालीन युग में यूरोप का समाज मुख्य रूप से तीन स्टेट में विभक्त माना जाता था। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत राजा महाराजा, उच्च शासनाधिकारी एवं बड़े बड़े जागीरदार आते थे। वे सभी कुलीन वर्ग के लोग माने जाते थे। उनके जीवन का तौर तरीका, सामाजिक मूल्य और प्रतिमान सभी कुछ विशिष्ट ढंग के हुआ करते थे। वे लोग अपने ही समूह के अंदर शादी विवाह आदि रस्म भी किया करते थे। चर्च के लोग दूसरे स्टेट के प्रतिनिधि माने जाते थे, अर्थात पादरी वर्ग। पादरी वर्ग के लोगों का स्थान समाज में कुलीन वर्ग के बाद माना जाता था। कुलीन वर्ग के लोगों की तुलना में उनकी सामाजिक हैसियत और सुविधाएं थोड़ी कम थीं, पर आम लोगों की तुलना में उनका स्थान बहुत बेहतर था। तीसरी श्रेणी में समाज के साधारण लोग आते थे, जैसे दास, मजदूर, किसान, व्यापारी, कारीगर इत्यादि। यदि जाति व्यवस्था की तुलना इस श्रेणी से की जाती है तो इसमें वैश्यों और दलितों के अलावा वैसे राजपूतों को भी रखा जा सकता है जो उच्च शासन के पदों पर आसीन नहीं थे। इसे साधारण वर्ग यानी थर्ड स्टेट भी कहा जाता है। स्टेट व्यवस्था जाति व्यवस्था से इस रूप में भिन्न थी कि व्यक्तिक योग्यता, गुण, उपलब्धि के आधार पर इस वर्ग के लोगों को राजा से कभी कभी उच्च उपाधि भी प्राप्त होती थी, और कभी कभी इन तीन श्रेणी के लोगों के बीच शादियां भी हो जाया करती थीं। स्टेट व्यवस्था का स्वरूप यूरोप के किसी भी देश में राष्ट्रीय या राजकीय पैमाना पर एक समान नहीं पाया जाता था, बल्कि इसका स्वरूप क्षेत्रीय था, अर्थात सामाजिक स्तरण का स्वरूप स्थानीय था, राष्ट्रीय नहीं। कहीं पर कोई व्यक्ति यदि समाज में निम्न स्तर पर माना जाता था तो वही व्यक्ति राज्य के किसी दूसरे हिस्से में मध्य या उच्च श्रेणी का माना जाता था। लेकिन यूरोप के प्रतिकूल चीन और जापान में यह स्टेट व्यवस्था का स्वरूप राज्य स्तर पर एक ही प्रकार का था। यूरोप की तरह यह स्टेट व्यवस्था का स्वरूप वहां क्षेत्रीय नहीं था। वर्ग यानी क्लास। आज स्तरण वर्ग व्यवस्था का सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय आधार माना जाता है। वर्ग व्यवस्था अस्तरण से कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा के पहले यह समझ लेना जरूरी है कि वर्ग क्या है। इसलिए कि यह एक ऐसा संबोधन है जिस पर समाजशास्त्री ही नहीं बल्कि दूसरे समाज वैज्ञानिकों ने भी काफी चिंतन किया है। विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न तरह से रखा है। सत्य तो यह है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के पूर्व वर्ग व्यवस्था के ऊपर काफी चिंतन हो चुका था। कार्ल मार्क्स से लेकर अब तक अनगिनत समाज वैज्ञानिकों ने इस विषय पर काफी चिंतन किया है, जिसे यहाँ संक्षेप में रखने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य सभी वैज्ञानिकों की तुलना में कार्ल मार्क्स एवं मैक्स वेबर का योगदान इस विषय पर संभवतः सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मार्क्स तो अपने वर्ग संबंधी विचारधारा के चलते आज विश्व में अमर है। यह बात दूसरी है कि उनके विचारों को लेकर सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच बहुत गहरा मतभेद है। वर्ग के संबंध में मार्क्स का कहना है कि यह पूंजी एवं उत्पादन के साधनों एवं स्वामित्व यानी ओनरशिप ऑफ कैपिटल एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के विचार पर आधारित है। उनके अनुसार आधुनिक समाज में लोग मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित होते हैं, एक वह जिसके पास पूंजी है तथा जो उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण रखता है यानी पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वह जो उत्पादन करता है यानी मजदूर वर्ग। मार्क्स के विचार से यहाँ यह जाहिर होता है कि वर्ग का आधार मुख्यतः आर्थिक है। किसी अर्थव्यवस्था में किसी समूह का किस तरह का नियंत्रण है, यही समाज के अस्तरण का मुख्य आधार है। दूसरी तरफ वेबर ने यह बताया है कि वर्ग का आधार मात्र आर्थिक नहीं है, बल्कि वर्ग का आधार यह भी है कि किसी व्यक्ति की सेवा का बाजार में कीमत क्या है। व्यक्ति की योग्यता एवं शिक्षा इस बात का निर्धारण करती है कि उस व्यक्ति की सेवा की खुले बाजार यानी मार्केट सिचुएशन में क्या कीमत है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जीवन के अवसर यानी लाइफ चांसेस बहुत हद तक व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। वेबर ने बाजार की बात इस संदर्भ में रखा है कि हर प्रकार के पेशों का हमेशा समान महत्व नहीं होता है। जैसे भारत में आजादी के पहले वकालत का पेशा बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता था, लेकिन आज वकीलों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि समाज में उस पेशे की महत्ता बहुत कम है। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखकर आधुनिक समाज को वेबर ने चार भागों में श्रेणीबद्ध किया है। पहला, धनी वर्ग द प्रोपरेटियल क्लास। दूसरा, बुद्धिजीवी प्रशासनिक एवं प्रबंधक वर्ग द इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल क्लास। तीसरा, परंपरागत निम्न मध्यवर्गीय व्यापारी वर्ग ट्रेडिशनल पेटी ब्यूरोगेजिस क्लासेस ऑफ बिजनेसमैन। और चौथा, मजदूर वर्ग यानी द वर्किंग क्लास। वेबर ने आर्थिक कार्यों पर आधारित इन चार वर्गों के अलावा वैसे वर्ग की भी बात की है जिसका आधार सामाजिक प्रतिष्ठा या स्थिति है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समाजशास्त्रियों ने वेबर द्वारा प्रतिपादित वर्ग संबंधी विचारों का विरोध किया है। इन लोगों का तर्क है कि वर्तमान अमेरिकी समाज वर्ग विहीन है, इसीलिए कि वहाँ विभिन्न वर्गों के बीच बंटवारा उतना साफ नहीं रखा गया है। एक वर्ग दूसरे वर्ग से इतना अधिक नज़दीक है कि एक अविच्छिन्नक यानी कंटिन्यूम की स्थिति कायम हो जाती है। जिन समाजशास्त्रियों ने ब्रिटेन की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि वहाँ मुख्य रूप से तीन ही वर्ग पाए जाते हैं। पहला मजदूर वर्ग यानी वर्किंग क्लास, दूसरा मध्यम वर्ग यानी इंटरमीडिएट क्लास, और तीसरा उच्च वर्ग यानी अपर क्लास।